हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 74। दूसरी तरफ राजमहल में सुबह हो गई है, लेकिन अब तक चंद्रिका एक बार भी अपने महल से बाहर नहीं निकाली और पहरेदारों को ये बात खटक रही है, क्योंकि अब तक तो वो सुबह का नाश्ता करने के लिए चली ही जाती थी। इसलिए जब सेविकाओं ने अंदर जाकर देखा तो उन लोगों को पता चल गया कि चंद्रिका, जो कि असली राजकुमारी वसुंधरा है, वो वहां पर अपने कमरे में है ही नहीं। और ये बात पता चलते ही सेविका तुरंत ही भागते हुए रानी कादंबरी के पास गए और सर झुकाते हुए उसने रानी को इस बारे में पूरी बात बता दी। और ये बात जानते ही रानी एकदम ही अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने पहले तो सेविका की बात पर भरोसा नहीं हुआ कि इतने कड़े पहरे के बाद भी चंद्रिका रात को अपने कमरे से निकलकर कहीं चली गई होगी। लेकिन फिर सेविका ने बताया कि उसने पूरे कमरे में देखा, लेकिन फिर भी उसे वहां पर चंद्रिका नहीं नजर आई, तो ना चाहते हुए भी रानी को उसकी बात पर भरोसा करना पड़ा। लेकिन उसने तेज आवाज में चिल्लाकर सारी सेविकाओं को बुलाया, सुरभि, मोती, रमा, गंगा, जल्दी से सब इधर आओ और पूरे महल में जाकर चंद्रिका को तलाश करो। रानी कादंबरी का आदेश सुनकर उनकी खास सेविका फिर भी और महल की बाकी सारी सेविकाएं पूरे महल में इधर उधर जाकर चंद्रिका को ढूंढने लगीं। वहीं रानी कादंबरी उसके इस तरह बिना बताए चुपचाप महल से कहीं चले जाने को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और नाराज भी। लेकिन अभी रानी को चंद्रिका से ज्यादा गुस्सा पहरेदारों पर आ रहा है, क्योंकि उन सबको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज था कि चंद्रिका ऐसी कोई ना कोई हरकत करेगा, इसीलिए ही उन लोगों ने कल पहरा लगवाया था। लेकिन फिर भी वो वहां से निकल गई, इसका मतलब साफ था कि पहरेदारों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। इसलिए रानी गुस्से में अपने कमरे से निकालकर चंद्रिका के कमरे तक आए और वहां पर जितने भी पहरेदार खड़े थे उन सब पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे थे तुम सब रात को यहां पर पहरा दे रहे थे या फिर अपनी नींद पूरी कर रहे थे? राजकुमारी वसुंधरा अपने कमरे से बाहर कैसे गई? रानी की इस बात और सवालों का जवाब किसी के भी पास नहीं था, इसलिए वो सारे पहरेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कोई कुछ भी नहीं बोला। उन सब ने अपना सिर नीचे झुका लिया। रानी को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला तो रानी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने जोर जोर से चिल्लाकर सैनिकों को बुलाया और उन पहरेदारों को ले जाकर करार कोठरी में बंद कर देने के लिए कहा, यहां से ले जाओ इन सब कामचोरों को, किसी काम के नहीं है ये सब। इनके होते हुए भी चंद्रिका अपने कमरे से ही नहीं महल से भी बाहर निकलकर अभी भी और ये लोग यहां पर खड़े हैं, इनमें से कोई भी अब हमारी नजर के सामने तो कारण नहीं आना चाहिए। रानी ने बाकी सिपाहियों की तरफ देखते हुए आदेश दिया तो रानी का आदेश सुनते ही सिपाही उन पहरेदारों को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। रानी इन सब के बाद तुरंत ही राजा के पास आए, जो कि अपने मंत्रियों के साथ किसी सभा में व्यस्त थे। लेकिन राजा को देखकर राजा उठकर उनकी तरफ आए और रानी से पूछने लगे, क्या हुआ है महारानी जी, आप परेशान हो रही हैं, किसी बात को लेकर सब ठीक तो है ना? रानी उसी तरह से परेशान सी आवाज में बोली, नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ने हमें परेशान करने का जिम्मा जो लिया हुआ है। रानी कादंबरी ने ये बात बोली और उनकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही है। रानी को इतना ज्यादा परेशानी में और घबराते हुए देखकर राजा ने हल्के से रानी के हाथ पर अपना हाथ रखा और उनकी तरफ एक नज़र देखते हुए कहा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें बताइए आप क्या किया है राजकुमारी ने, हम उन्हें समझाएंगे, हम समझ सकते हैं, उनके लिए इतनी जल्दी अपनी पहचान को स्वीकार कर पाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि हमें यह सब उनके भले के लिए, उनकी जान बचाने के लिए ही किया, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों की जान पर कोई भी खतरा नहीं देख सकते। राजा की ऐसी बातें सुनकर रानी ने असल बात के बारे में सोच और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आप उस लड़की को समझा तो तब पाएंगे ना जब वो यहां पर महल में होगी, वो अपने कमरे में भी नहीं है और ना ही पूरे महल में, कल रात ही पहरेदारों को चकमा देकर वो यहां से निकल गई। रानी की बात सुनकर राजा को जैसे यकीन ही नहीं हुआ, क्या क्या बोल रही हैं आप, वसुंधरा महल में नहीं है, वो महल से बाहर नहीं जा सकती, आप जानती हैं ना उनकी जान को खतरा है और अगर उसे शैतान को सच्चाई पता चल गई तो वो एक पल भी नहीं लगाएगा, वो चंद्रिका को भी ले जाएगा अपने साथ। ये बात बोलते हुए राजा और रानी के चेहरे पर फिर से वही डर नजर आ रहा है जिसके साथ वो इतने सालों से जी रहे थे, और इतनी योजना बनाने के बाद भी अगर चंद्रिका को कुछ हो जाता है तो राजा और रानी दोनों ही खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ, छोड़ दो हमें, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिल रहा है तुम्हें इस तरह से हमें कैद में रखकर? वहां विक्रांत के कब्जे में वसुंधरा को जैसे ही सामने से आता हुआ विक्रांत नजर आया, वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए ये बात बोली। और पिछले दो दिनों से जब भी वो विक्रांत को वहां पर आते हुए देखते हैं या उसे उसकी आहट महसूस होती है, तब तुरंत ही वसुंधरा इसी तरह से चलने लगती है, क्योंकि इसके अलावा तो उसे और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा वहां से निकलने का। विक्रांत उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वो बस उसे देखने के लिए आता है कि वसुंधरा वहां पर ठीक ठाक सही सलामत है या नहीं, क्योंकि जब तक तेज वो रात नहीं आती तब तक ना वो वसुंधरा को वहां से जाने दे सकता है और ना ही उसे कुछ होने दे सकता है। वसुंधरा के बार बार चिल्लाने की वजह से विक्रांत ने आखिर उसकी बात का जवाब देते हुए थोड़े गुस्से में कहा, नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हें, और कितनी बार बताऊं तुम मेरी शक्तियां बढ़ाने की। उसके और वसुंधरा के बीच एक हाथ का फासला है और वो सीधा वसुंधरा की तरफ ही देख रहा है, लेकिन वसुंधरा को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के एकदम ही नजदीक खड़े हैं। और तभी वसुंधरा को एक झटका सा लगा और वो वहां जमीन पर गिर गई। तभी उसे कमरे की जमीन हिलती हुई सी महसूस हुई और विक्रांत अभी अपनी जगह से हल्का सा लड़खड़ा गया। क्या हो रहा है ये? क्या तुम ये कर रहे हो? तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो सीधे मार दो, ये इस तरह से? वसुंधरा को जैसे ही अपने आसपास बहुत कुछ अजीब सा होता हुआ महसूस हुआ, उसने फिर से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, जबकि विक्रांत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो वसुंधरा पर हमला या फिर उसे मारने की कोई कोशिश कर रहा है। वो खुद ही इधर उधर अपने चारों तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो जगह इतनी ज्यादा हल कैसे रही है, जबकि अब तक तो वो ठीक ठाक थी। इसलिए वसुंधरा के बोलने पर विक्रांत ने उसे पर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और ये सब मैं नहीं कोई और कर रहा है, मुझे देखना होगा। इतना बोलकर विक्रांत वहां से बाहर चला गया। पांचवां, कौन से शैतानी मंदिर के बारे में बात कर रहा है वीरेश, और क्या वो पहुंच पाएगा विक्रांत और वसुंधरा तक? चंद्रिका और समर वीरेश के साथ मिलकर तय कर पाएंगे ये मुश्किलों भरा सफर? क्या करेंगे अब राजा और रानी? किस तरह से चंद्रिका को ढूंढ कर लेंगे वापस महल में, या इससे पहले ही विक्रांत को पता चल जाएगा असली राजकुमारी के बारे में? और किसने किया है विक्रांत पर हमला? क्या वीरेश वहां पर पहुंच गया है या फिर कोई और?